पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स स्वास्थ्य मंत्री ने क्वींसलैंड पर लगाया कोरोना जांच प्रक्रिया को निष्क्रिय करने का आरोप। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने से व्यापारी परेशान। और खिलाड़ियों के कोरोना जांच नेगेटिव आने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ली राहत की सांस। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री ने क्वींसलैंड के प्रीमियर पर आरोप लगाया है कि वे कोरोना की पैथोलॉजी जांच के उद्देश्य को निरर्थक कर रही हैं। पहले से ही दबाव में चल रही कोरोना जांच व्यवस्था क्वींसलैंड यात्रियों के जांच आवेदन से लगभग अटक गई है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हजार्ड का कहना है कि जांच नतीजे आने में अब इतना वक्त लग रहा है कि इन जांचों की कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह जा रही है।
I've encouraged in the strongest possible terms the Premier of Queensland to revisit her proposition that she will change the testing arrangement for travellers into Queensland on the 1st of January. Obviously that's still a few days away for us in New South Wales. And the rate of testing that we are doing far more than any other state or territory. And the net result of that is there are incredible pressures on our pathology laboratories, both the public ones and the private ones.
ये तब आता है जब न्यू साउथ वेल्स में आज 6062 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। ये कल के बनिस्बत 172 कम नए संक्रमण हैं। इस समय राज्य में 557 लोग कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 60 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ ने अब कोरोना वायरस से संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू होने वाले एकांतवास के नियमों में परिवर्तन किया है। वे स्टाफ कर्मचारी जो सेवा क्षेत्र के लिए अनिवार्य हैं और किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के निकट संपर्क हो गए हैं, वे अब 7 दिन के एकांतवास के बाद काम पर लौट सकेंगे, बशर्ते उनकी 6ठे दिन की कोरोना जांच नेगेटिव आई हो। अब तक ये एकांतवास का काल 14 दिन का हुआ करता था। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ की डिप्टी सचिव नाइजल लियोन का कहना है कि ये बदलाव स्वास्थ्य कर्मचारियों और मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इसी बीच विक्टोरिया में आज 2738 नए कोरोना मामले और 4 मृत्यु दर्ज की गई हैं। विक्टोरिया राज्य में 361 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 69 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। उधर क्वींसलैंड यात्रियों के आगमन के 5वें दिन कोरोना पर अनिवार्य PCR जांच के नियम को अब हटा रहा है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री इवेट डाथ का कहना है कि सरकार इस नियम को उन लोगों के लिए हटा रही है जो अंतरराज्यीय यात्रा करके लौटे हैं। हालांकि यात्रियों को अब भी कोरोना जांच की हामी भरने के लिए बॉर्डर पास के आवेदन आवश्यक होंगे। सुश्री डाथ का कहना है कि लोगों को अब इस नियम से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हालांकि उन्हें तब तक जांच कराने की आवश्यकता नहीं है जब तक वे सचमुच कोरोना के लक्षण ना महसूस कर रहे हों।
Now I do want to, and the Deputy Commissioner will talk a little bit more about this, advise people who are travelling from interstate that the border pass itself will still require you to commit to doing a day 5 test. So please say yes to that, because that will be the way that you still get your border pass.
क्वींसलैंड में आज 1158 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में फिलहाल 6 लोग कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। कोषाध्यक्ष जॉर्ज फ्राइडनबर्ग का कहना है कि सरकार समुदाय के संवेदनशील समूहों तक बूस्टर खुराकें पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। बीते दिन न्यू साउथ वेल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पहली मृत्यु दर्ज की गई थी। ये 80 वर्षीय व्यक्ति पश्चिमी सिडनी की एक एज्ड केयर व्यवस्था में थे, जहां वे संक्रमित भी हुए थे। श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि सरकार एज्ड केयर कर्मचारियों के साथ बूस्टर खुराकें वितरित करने में जुटी हुई है।
Well, we're working with aged care providers. We're working with all key stakeholders to ensure that the booster program rolls out. And let's not forget that Australia's vaccination program has been very successful. We have a double dose vaccination rate now above 90%.
22 दिसंबर को एज केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी कमीशन ने घोषणा की थी कि वे एज केयर व्यवस्था में अतिरिक्त देखरेख करेंगे ताकि नियमों का पालन हो सके और संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। कमीशन का यह भी कहना है कि प्रकोप की प्रतिक्रिया धीमी या निष्क्रिय पड़ने पर वे सख्त कार्यवाही करेंगे। हाल में आए रुझान सुझाते हैं कि फेडरल विपक्ष इस बार लिबरल के हाथों से 12 सीटें खींच सकता है। इसी के साथ सुझाया यह भी जा रहा है कि 2022 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में लेबर 80 से अधिक सांसद लेकर बहुमत के साथ लोकसभा में अपनी पैठ बनाएगी। ये आंकड़े द ऑस्ट्रेलियन की नवीनतम न्यूज पोल एनालिसिस में सुझाए गए हैं, जो दिखाता है कि लेबर ने बढ़त बनाते हुए कोएलिशन के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पिछली तिमाही में ये सुझाया गया था कि विपक्ष नेता एंथनी एल्बनीजी गठबंधन सरकार से 9 सीटें अपनी ओर खींच सकते हैं, जिसमें से 2 संसद क्षेत्र मुख्यमंत्रियों के भी हैं। ये संसद क्षेत्र पीटर डटन की डिक्सन सीट और केन व्योट की हैसलक सीटें हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटानी सरकार का कहना है कि वे राष्ट्र में नए साल के पहले कोई नए कोरोना प्रतिबंध लागू नहीं करेगी। यह तब आता है जब राष्ट्र में दैनिक कोरोना मामले 1 लाख का आंकड़ा छू रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद का कहना है कि वे नए साल में फिर एक बार परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे।
Well, of course, we look at the data on a daily basis. That hasn't changed over the Christmas period. But there will be no further measures before the new year. We won't be taking any further measures. Of course, people should remain cautious as we approach New Year celebrations. And, you know, take a lateral flow test, if that makes sense. Celebrate outside if you can. Have some ventilation indoors if you can. Please remain cautious.
उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते बढ़ रहे कोरोना मामलों की रोकथाम के लिए पूर्ण फेडरल समर्थन का वादा किया है। सरकार के प्रयास रहेंगे कि कोरोना की जांच जितनी हो घर पर रहकर ही की जा सके। राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना जांचों के लिए लगने वाली लंबी कतारें और असमंजस की स्थिति को स्वीकारा और यह माना कि अमरीकी जनता छुट्टियों के इस मौसम में परेशान हो रही है। उन्होंने सरकार के अगले महीने की शुरुआत से अमरीकी जनता के लिए 500 मिलियन रैपिड एंटीजन टेस्ट मुहैया कराने की बात भी याद दिलाई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मॉस्को से पश्चिमी सैन्य ताकतों को चेतावनी दी है कि रूस और नेटो की यूक्रेन को लेकर सैन्य टकराव हो सकती है। रूसी मंत्रालय ने डिप्टी रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन का एक वीडियो वितरित किया है, जिसमें वे नेटो की अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रतिनिधियों को एकत्र करने के लिए उनकी निंदा करते नजर आ रहे हैं। इन प्रतिनिधियों में 14 पूर्व नेटो सदस्य भी शामिल हैं। श्री फोमिन ने नेटो पर आरोप लगाया है कि हाल के सालों में उन्होंने रूसी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गतिविधियां बहुत बढ़ा दी हैं, जिनमें क्रेमलिन को केंद्र में रखते हुए भी कई सैन्य अभ्यास किए गए हैं। और अब खबरें भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड और बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करने के लिए कानपुर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। PMO के एक बयान में कहा गया है कि शहरी गतिशीलता में सुधार करना प्रधानमंत्री के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में रहा है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह IIT कानपुर से मोती झील तक पूरा 9 किलोमीटर लंबा खंड है। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और IIT मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। उधर ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के बढ़ते खतरे के बीच लगे नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली के व्यवसायी परेशान हैं। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। भारतीय राजधानी में अब तक 142 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। रेस्टोरेंट के मालिकों की चिंता है कि साल का वो समय जब व्यवसाय सबसे अधिक बढ़ना होता है, बंदी जारी कर दी जाएगी। एक रेस्टोरेंट मालिक ने ANI से बात करते हुए कहा कि
Being 31st, it's one of the most busiest times of the year. तो वो सारा बिजनेस हमारा ऑब्वियसली चला जाएगा। सो काफ़ी गंदा इफेक्ट होएगा सारे रेस्टोरेंट बिजनेस में। स्पेशली पार्टी प्लान करी थी हमने, एक DJ इवेंट बुक करवाया था, वो लाइव इवेंट था और साथ में भी, अब वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली अब नहीं हो पाएंगी बिकॉज हमने, अब क्या कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली हुई तो हमको फॉलो करनी पड़ेगी।
और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.22 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीमों के सभी खिलाड़ियों की कोरोना जांच के नतीजे नेगेटिव आने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने राहत की सांस ली है। अंग्रेजी दल के 4 ऐसे खिलाड़ी जो मैच में हिस्सा नहीं ले रहे थे रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद खेल के दूसरे दिन सभी खिलाड़ियों को अनिवार्य PCR जाँच करानी पड़ी थी। नतीजे आने तक सारी क्रिकेट व्यवस्था परेशान रही, क्योंकि इन नतीजों का प्रभाव केवल बॉक्सिंग डे टेस्ट पर ही नहीं पूरी एशेज सीरीज पर पड़ने वाला था। आज सुबह राहत भरी ये खबर सुनने के बाद अगले 3 दिन के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेल योजना अनुसार ही चलेगा। और अंत में एक नज़र कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप के साथ अधिक गर्मी भी होगी। यहां अधिकतम तापमान 38 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल धूप ही धूप है, यहां अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल तेज धूप रहेगी, यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 60 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल बदली छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री रह सकता है। डार्विन में कल तूफान की आशंका जताई जा रही है, अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छाओं का मौसम है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।